हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। इस जगत में प्रायः सब लोग दुखी हैं और दुख का वास्तविक कारण है अज्ञान। अनेक अनेक जन्मों से हमारे हृदय में अज्ञान भरा हुआ है और अज्ञान के कारण ही हम सब लोग दुखी हैं। जब जीवन से अज्ञान निकल जाता है तब यह जीव परम सुख को प्राप्त हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे कोई एक कमरा हो और उस कमरे में हजारों लोग बैठे हो, समझ लो उस कमरे में अचानक सहसा बिजली चली गई और सबको पता चला कि हमारे बीच में एक सांप आया है। उस सांप को देखकर सब लोग खड़े हो जाएंगे, दौड़ेंगे, यहां वहां भागेंगे, कूदेंगे, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। परंतु कुछ समय के बाद यदि प्रकाश आ जाए और तब पता चले, अरे बाप रे, ये सांप नहीं, ये तो रस्सी थी, खामखा हम लोग भाग रहे थे। श्री रूप गोस्वामी इस दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, कमरे में अंधेरा होने के कारण रस्सी को सर्प समझकर बैठते हैं और इस अज्ञान के फल स्वरूप हम लोग दुखी हो जाते हैं। परंतु जैसे ही प्रकाश हो जाता है, हमारे वेदों में ज्ञान की उपमा प्रकाश के साथ की गई है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान अंधकार के समान है और ज्ञान प्रकाश के समान है। जैसे ही प्रकाश रूपी ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान चला जाता है। ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु मात्र ज्ञान प्राप्त कर लेना ही ये कोई बड़ी वस्तु नहीं है। ज्ञान तो सबको हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को प्राप्त करना यह महत्वपूर्ण वस्तु है। और उस कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर सवार होकर अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मात्र कोरा ज्ञान ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दूंगा। विज्ञान, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस श्लोक के परपोट में लिखते हैं, वास्तव में विज्ञान देने में एकमात्र कृष्ण ही समर्थ है। विज्ञान का अर्थ होता है वह ज्ञान जो जीवन में अप्लाई हुआ हो, जो जीवन में लागू हुआ हो। यदि कितना भी बड़ा ज्ञान है, कितना भी वेद और शास्त्र का पठन पाठन और अध्ययन किया है, परंतु वह ज्ञान यदि हमारे जीवन में नहीं उतरता है तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे खर का अर्थ होता है गदा, जैसे गधे के ऊपर बहुत सारा वजन रखा जाता है, बहुत भार, गधा बहुत भार ढोता है, कभी कभी उस गधे के ऊपर मलई पर्वत का चंदन रखा जाता है, परंतु गधे को उस मलई पर्वत के चंदन का वजन तो पता है, 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो, परंतु उस चंदन की महिमा नहीं पता है। यथा खर, आप चंदन ठीक से नहीं समझ पाओगे, आप टीवी समझ लीजिए, इतना बड़ा टीवी यदि गधे के ऊपर रखा जाए तो गधा इस टीवी के भार को, भार का एहसास करेगा, परंतु इस टीवी की महिमा गधा नहीं जान सकता। यथा खर टीवी भारवाही, भारस्य वेता न तु टीवी यस्य, वह गधा भारस्य वेता टीवी के भार को जान सकता है, परंतु टीवी की जो महिमा है उसमें 100 चैनल होती है, दूरदर्शन आता है, वो नहीं पता है। भगवान कहते हैं तथाच विपरा श्रुति शास्त्र युक्ता मद भक्ति हीनो खरवत वदंती। उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोग बहुत वेद शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, धारण नहीं करते हैं। इसलिए वे भले बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़े हो, परंतु वो वेद शास्त्र का सार है भक्ति, और उस भक्ति को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो वह उस गधे के समान है, मात्र भार ढो रहा है, शास्त्र के भार को मस्तक पे लेकर चल रहा है। ज्ञान के साथ साथ विज्ञान होना चाहिए, और यह एकमात्र कृष्ण ही दे सकते हैं, कृष्ण की कृपा से ही यह ज्ञान हमारे जीवन में अप्लाई होता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की परंपरा में जितने भी लोग हैं वे सब लोग इस ज्ञान के साथ विज्ञान देने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी समर्थ है विज्ञान देने में, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, अक्षोभ्य, माधव, जय, सिंधु, विद्यानिधि, भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में जितने भी लोग हैं ये सब लोग ज्ञान के साथ साथ विज्ञान देते हैं। इसलिए भक्तों, उन भक्तों के मुख से ही भगवत कथा सुननी चाहिए जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में है। और आज हम लोग इतने सौभाग्यशाली बने हैं, इतने भाग्यशाली आज हम लोग बने हैं कि उन्हीं शुद्ध गुरु परंपरा के, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। यहां पर जो भी कहा जा रहा है श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षा, उपदेश और सिद्धांत के अंतर्गत समस्त वस्तु का निरूपण हो रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। भक्तों, इस सौभाग्य को हमें समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है इस संसार में जो लोग बहुत धनी हैं वो भाग्यवान नहीं है, इस संसार में जो लोग बहुत रूप वाले हैं वो लोग भाग्यशाली नहीं है, या जिनके पास गाड़ी बंगले हैं वो लोग भाग्यशाली नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमित है, इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक जीव रहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण दशस में घाट के ऊपर उपदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं इस ब्रह्मांड में अनेक जीव है, यह ब्रह्मांड जीवों से खचाखच भरा हुआ है, परंतु उन सभी जीवों में से सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, और सब लोग भाग्यशाली नहीं है, इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोग, बहुत, और वो भाग्यशाली कौन है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज। जो शुद्ध गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज हृदय में प्राप्त कर लेता है, सबसे महान भक्त है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। निश्चित हमने पूर्व जन्म में कुछ सुकृति की होगी, कुछ पुण्य किए होंगे, और इस जन्म में श्री प्रभुपाद और उनके जितने भी अनुचर भक्त हैं उनकी कृपा से आज हम लोग लगे हैं। तब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? अब योग्य रास्ता, योग्य जगह तो मिल गई, शुद्ध कथा मिल गई। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस भक्ति के बीज को संभाल कर रखिए। माली हैया करे से ही बीज आरोपण, माली बनकर इस भक्ति के बीज को हृदय में बोइए और इस हृदय में डालकर श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन, श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस भक्ति को बढ़ाते जाइए। यदि हम इसी प्रकार इस शुद्ध परंपरा में नित्य निरंतर भगवत कथा का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे, उपाड़े व बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये लता जो है इस ब्रह्मांड को भेद कर इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक को भेद कर विरजा पर व्योम पाए, विरजा नदी को पार करके पर व्योम भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान के चरणों में स्पर्श हो जाए हमारी भक्ति। लेकिन ये कब होगा? जब निरंतर भगवत कथा सुनते रहेंगे, निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे। परम सौभाग्य है कि आज हमें यह शुद्ध कथा श्रवण करने का अवसर मिला है, और उसमें भी मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारी माँ स्वरूप सुरांगी माता जी हमारे बीच में है, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हम सबका सौभाग्य बढ़ाने के लिए आई है। माला दीजिए, उनका स्वागत करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम राम राम,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हमारे जुहू मंदिर के परम वरिष्ठ भक्त देवकी नंदन प्रभु और माताजी उनकी धर्म पत्नी है, आइए, गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र वनवास के दौरान अनेक ऋषि मुनि को मिलते मिलते आगे बढ़ रहे हैं। भगवान राम अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि आज मुझे अनेक ऋषि मुनियों का दर्शन हो रहा है। यात्रा के दौरान भगवान श्री रामचंद्र श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। एक दिन भगवान वहां पर रुके, दूसरे दिन सुबह भगवान जब प्रस्थान कर रहे थे उस समय भगवान ने वाल्मीकि ऋषि को पूछा, प्रभु अब बहुत घना जंगल है, बहुत विशाल वन है, और मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। देखिए भगवान राम कितना सुंदर हमें सिखाते हैं अपने आचरण से। आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता कि हमको ये अयोध्या से भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है। जो भी व्यक्ति मिलते थे, प्रभु आप वन में क्यों? भगवान इतना ही कहते थे, पिता दीन मोहे कानन राजू। मेरे पिता दशरथ ने देखा कि राम को मात्र छोटी सी अयोध्या का राजा बनाऊंगा, राम तो बहुत गुणवान है, बहुत विशाल है, इनको छोटी सी अयोध्या का राजा नहीं, इनको तो फॉरेस्ट का मंत्री बनाना चाहिए, जंगल का मंत्री बनाना चाहिए। तो पिता ने, ये क्या आज हो रहा है, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। तब वाल्मीकि भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के ही अनुग्रह से बता रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ रहेंगे। सबसे प्रथम वाल्मीकि कहते हैं कि जो लोग प्रभु आपकी नित्य निरंतर कथा सुनते रहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, होई निरंतर होई न पूरे, तिनके गृह रहु रघुवीरे। जो निरंतर आपकी कथा सुनता रहता है और निरंतर कथा सुनते रहने के बाद भी तृप्त नहीं होते हैं, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, सुनाते रहिए, निरंतर सुनाते रहिए। बस जो इसी प्रकार जो कहता रहता है उनके घर पर, जैसे महाराज परीक्षित हैं, सात दिन उनके जीवन में बचे थे, चार दिन चार रात बीत गए, न तो थोड़ा भोजन किया, न पानी पिया, न सोए, कुछ नहीं, और फिर भी कह रहे थे कथा सुनाइए कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा कि आप राजा हो और राजा खाने पीने के बहुत अभ्यस्त होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए चार दिन से आप भूखे हो प्रभु, पहले आप भोजन कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, और फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तब परीक्षित कहते नहीं प्रभु, नहीं शाति दुई सहा सुनमाम त्यक्तोदम अपि न बाधते। प्रभु मुझे न तो भूख है न प्यास है, मुझे कुछ नहीं पीना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे केवल कथा सुनना है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही है, वहां तो जंगल में गए थे, आधे दिन तक प्यासे थे, तो एक ऋषि मुनि का अपराध कर दिया, परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला था, वो आधे दिन प्यासे थे और समीक ऋषि के आश्रम में गए, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। वहां आधे दिन में आप प्यासे हो गए, यहां चार दिन चार रात बीत गए, फिर भी प्यास नहीं, फिर भी भूख नहीं, न जाने ऐसा आपको क्या मिल रहा है। तब महाराज परीक्षित भागवत के दसम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहते हैं, प्रभु पीवन ताम मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथा मृतम, आपके श्री मुख से जर्जर जर्जर झरने की तरह झरता हुआ कथा अमृत पी रहा हूं, बताइए साधारण पानी की प्यास कैसे लग सकती है, है? साधारण जो व्यक्ति अमृत का पान कर रहा है, जो अमृत पी रहा है, वो साधारण जल कैसे मांग सकता है। आप कथा अमृत पिलाइए, कथा अमृत के समान है, और अमृत का अर्थ होता है नवमृत, जो कभी मरे नहीं, जो कभी पुराना न हो। वैसे भगवान की कथा भी कभी पुरानी नहीं होती है, ये कथा जितनी आप सुनते जाओ उतना रस आता जाता है, ये भगवान की कथा की विशेषता है। और संसार की कथा आज हिट है तो कल पुराना, आज न्यू है तो कल ओल्ड हो जाएगा। संसार का गाना जो है, एक दिन गाओगे, दो दिन, तीन, दस, एक महीना, दो महीना, तब तक तो पुराना हो जाएगा, फिर नया आएगा। परंतु भगवान की कथा जो है कभी पुरानी नहीं होती है। यद्यपि भगवान की कथा बहुत पुरानी है, परंतु पुरानी होकर भी उसमें नित्य नवीन आनंद आता रहता है, नित्य आनंद मिलता रहता है। इसलिए जो लोग निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करते रहते हैं और बार बार कथा सुनने के बाद भी उबते नहीं हैं, उनके गृह में, उनके हृदय में जाकर प्रभु आप रहिए, प्रथम स्थान। दूसरा स्थान कहा, जिनकी जीवा निरंतर आपके रूप गुण और नाम का गुणगान करती है, उनके घर पर आप रहिए। तीसरा स्थान कौन सा बताया, जो अपने नेत्रों से निरंतर प्रभु आपका दर्शन करते रहते हैं, उनके घर पर आप रहिए। और चौथा स्थान बताया, जो लोग अपनी नासिका से भगवान की तदीय आपकी तदीय वस्तु को ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं, तुलसी को सूंघते हैं, फूल को, निर्माल्य को, हार को, भगवान के चढ़ाए हुए अत्तर प्रसाद को जो सूंघते हैं, उनके घर पर जाकर रहे। अब आज पांचवा स्थान बता रहे हैं, प्रभु प्रसाद सोची सुभग सुबासा,
प्रभु प्रसाद सोची सुभग सुबासा,
सादर जासु लहई पांचवा स्थान बताते हुए कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही।
पांचवा स्थान बताते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही। हे प्रभु, जो लोग आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं उनके घर पर रहिए। इसका अर्थ है, जो लोग आपका प्रसाद ग्रहण करके ही अपना जीवन बिताते हैं, अर्थात आपके प्रसाद के बिना जो कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, उन लोगों के गृह में रहिए। यहां पर मुख की बात बताई गई है, जो अपने मुख से निरंतर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वास्तव में जीवन में हमें जो भी मिलता है यह सब कुछ भगवान का है। त्वदीय वस्तु गोविंदम, शास्त्र में भी कहा गया है, तुभ्यम एव समर्पये गृहाण सुमुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। त्वदी, हम भगवान को वस्तु जब अर्पण करते हैं तो भगवान निश्चित उसे ग्रहण करते हैं, और जैसे ही भगवान उसे ग्रहण करते हैं और फिर जो बचता है उसे प्रसाद कहा जाता है, और जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं प्रसिद्ध परमेश्वर, वह परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। वास्तव में संसार की सारी वस्तु भगवान की है। कभी कभी मन में प्रश्न होता है, हम लोग भगवान को भोग क्यों चढ़ाए? भगवान को इसलिए भोग चढ़ाना है, भगवान को इसलिए भोग लगाना है ताकि वह भोग भगवान का है। तो कुछ लोग दावा करते, नहीं, ये कमाने के लिए भगवान गए थे, कमाने तो हम जाते हैं, रात दिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, क्या एक दो दिन ऑफिस में भगवान जाते हैं? बोले, भले आपको लगता नहीं है परंतु निश्चित रूप से सब कुछ भगवान का है। क्योंकि आप मान लो ऑफिस में पैसे कमाने के लिए जाते हो, परंतु पैसे कमाने के लिए बुद्धि चाहिए, और वह बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान देते हैं। भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, ये बुद्धि नामक तत्व जो है ये अर्जुन मेरा है। भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है और मैं देता हूं। अनेक बार गीता में भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठे हुए मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सबको ज्ञान देता हूं, सबको स्मृति देता हूं। इस संसार में कुछ लोग बहुत धन कमाते हैं, अभिमानी अहंकारी हो जाते हैं, मैंने कमाया मैंने कमाया, परंतु वास्तव में धन कमाने की बुद्धि हृदय में बैठे हुए परमात्मा देते हैं। और जब बहुत अहंकार करेंगे और त्वदीय वस्तु गोविंदम नहीं करेंगे तो अंदर बैठे बैठे भगवान फ्यूज ऑफ कर देंगे बुद्धि का, फिर वो पागल होकर चार रास्ते के बीच में घूमेगा, घूमते ना कुछ पागल। बुद्धि भगवान देते हैं, शक्ति भगवान देते हैं, सामर्थ्य भगवान देते हैं। और यहां तक कि संसार में मान लो हम कुछ भी कमाएं कुछ भी करें, आखिर तो सब कुछ भगवान का ही है। यहां की वस्तु वहां, वहां की वस्तु यहां कर देते हैं, सोचते हैं ये हमारा है। परंतु विचार करो भक्तों, हमने हमारे अंदर से क्या निकाला। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम मंत्र में लिखा है, ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ये जगत जो है ईश आवास्य भगवान के अंदर से निकला है, इदम सर्वम ये सब कुछ जो है इसलिए भगवान का है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मातृगृत कस्य स्वित्तनम। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि ये वस्तु मेरी है, तो नारद जी राजसूय सभा में कहते हैं सस्तेन वह चोर है, दंडुम अर्हति, उसे निश्चित दंड मिलेगा। भगवान का माल है और अपना माल कहने वाला तो चोरी है। जैसे श्री प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, एक कारपेंटर था, एक मिस्त्री था और एक सेठ था। सेठ की इच्छा हुई कि मेरे घर पर एक बेड बनाऊं, एक पलंग, तो सोचा कि रेडीमेड लूंगा तो अच्छा अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मिस्त्री को बुलाकर इसे बनवाऊंगा। मिस्त्री को बुलाया, कहा पलंग बनाना है, बिस्तर बनाना है, बेड बनाना है, बोलो क्या क्या वस्तु चाहिए। उन्हें लिख कर दे दिया, इतना प्लाई चाहिए, इतना फेविकोल। सेठ ने उसे लाकर दे दिया और कहा कि अब बनाना शुरू करो। बोले 10 दिन में बन जाएगा। सेठ रोज घर से ऑफिस में सुबह निकल जाते थे, शाम को घर पर आते थे और धीरे धीरे वो पलंग बन रहा था। 10वें दिन जब सेठ घर पर आए तब वो मिस्त्री उस बेड को लेकर बाहर निकल रहा था। सेठ ने कहा ए बाहर क्यों निकल रहा है। मिस्त्र ने कहा मेरा पलंग है, अपने घर पर लेकर जा रहा हूं। ऐसे भगवान भी हंसते हैं आप लोगों के ऊपर है, देखो अपने पर ना आ जाए। मिस्त्र ने कहा कि ये मेरा पलंग है। सेठ ने कहा तेरा क्यों है, ये पलंग मेरा है। अब मिस्त्री और सेठ के बीच में झगड़ा हुआ। मिस्त्री कहता है मेरा पलंग है, सेठ कहता है मेरा पलंग है। अब आप लोग ही सत्य सत्य बताइए वो पलंग किसका है। आपको किस, यदि आपको जज बनाया जाए तो आप किसको दोगे वो पलंग है? सेठ को, मिस्त्री को नहीं दोगे? क्यों क्यों? बेचारे ने फेविकोल तो लगाया, लकड़ा तो काटा, फिर भी मिस्त्री का नहीं, सेठ का है ना, सेठ का है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे वह सारा सामान सेठ का है इसलिए पलंग सेठ का हुआ, उसी प्रकार इस जगत में सारी वस्तु भगवान से प्रकट होती है। हम तो यहां का माल वहां, यहां का यहां, और धन कमाते हैं सोचते हैं हमारा है, हमारा है, क्या खाक हमारा है। आप लोग ही बोल चुके हो सेठ का है, वास्तव में सब भगवान का है। और भगवान भी ऐसे नहीं है कि भाई सब कुछ मुझे दे दो। कभी आए आपसे, जन्म से लेकर आज तक भगवान ने हमें कितना दिया। अरे गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं एक नहीं करोड़ मुख भी मिल जाए ना, फिर भी भगवान ने जो दिया है उसको गिना नहीं पाएंगे। कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों करोड़ों मुख मिलने पर भी उस प्रभु के उपकार को हम गिना नहीं पाएंगे। इतने उपकार भगवान ने किए हैं, इतना सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया। बताइए इसकी, इस अमूल्य शरीर है, इसी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। यहां किसी को कहा जाए आप दोनों पांव काटकर यहां रख दो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, कौन देने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए, कोई नहीं। इसका अर्थ यही हुआ ना कि आपके दोनों पांव की कीमत कम से कम 1 करोड़ है। आप अपना मस्तक काट कर रख दीजिए, 5 करोड़ मिलेगा, कौन देगा। इसका अर्थ यही हुआ ना कि मस्तक की कीमत 5 करोड़ की है। ऐसे करके शरीर के सभी अंग की कीमत लगा दीजिए, इतना अमूल्य शरीर भगवान ने हमको दिया है। और केवल शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने हवा दिया। ये हवा जो है भगवान की है। भगवान कपिल देव कहते हैं, मद भयाति वाति वातो यम, हे मां देवहूती, ये जो वायु है मेरे भय से बह रही है। सूर्य तपति मद भयात, ये सूर्य मेरे भय से तप्त होता है। वर्षत इंद्र दह्यत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, ये बारिश सब कुछ मेरी कृपा से हो रहा है। शरीर को चलाने के लिए शरीर दिया, शरीर को चलाने के लिए हवा। कुछ लोग अभिमान करते हैं कि हमने धन कमाया, मेरा है मेरा है। अरे तेरे पास कितना भी धन है, ऊपर वाले ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, कहां जाएगा। हवा देना बंद कर दिया। और भूल से भी एक बार जन्म से लेकर आज तक जितना ऑक्सीजन भगवान का हमने ग्रहण किया है, भूल से भी भगवान ने बिल भेज दिया ना, 10,000 जन्म तक भी चुका नहीं पाएंगे। हवा दी शरीर टिकाने के लिए। सूर्य प्रकाश, देखिए आज सूर्य की कितनी जरूरत है। करोड़ों लोगों के कपड़े को सोख देता है। सूर्य न होता तो कोई जीवित नहीं रह सकता। और बात तो दूर रही, सूर्य नहीं होता तो हम लोग रिलायंस वालों के बिल भर भर कर थक गए, मर गए होते हैं। जब सूर्य है तब भी इतना बिल आता है, यदि नहीं होता तो कितनी कृपा भगवान की है। और उसमें भी बुद्धि भगवान देते हैं, स्मरण शक्ति भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा है, मेरा है, मेरा है। हमें कम से कम ये सब कुछ भगवान का है इतना तो समझो, और समझकर भगवान को अर्पण तो करो। वो भगवान भूखे नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वहां बहुत कमी पड़ गई है, अकाल हो गया है, महामारी हो गई है। वहां तो करोड़ों लक्ष्मी लाइन में खड़ी है। भगवान हमारी संपत्ति को, भगवान भाव देखते हैं, भाव ग्रही जनार्दन। देना चाहिए भगवान को। और भगवान को हम जितना देते हैं ना, एक अंदर की बात बता देता हूं, ये तो सीधा सिद्धांत है कि कुछ भी करके आप नहीं चाहते हो फिर भी भगवान को देना ही होगा। नहीं दोगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, ये सब अलग बात है। परंतु अंदर की बात बता दूं, यदि हम भगवान को देते हैं ना, तो हम जो देते हैं उससे करोड़ों गुना भगवान वापस लौटाते हैं। ये सीधा हिसाब है, सीधा, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। आप भगवान को 1 रुपया देते हो, भगवान 1,000 देते हैं। सीधा लॉजिक आपको बता दूं, आपके कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। हम 2 हाथ से भगवान को 1 रुपया देते हैं, भगवान के 1,000 हाथ हैं। जब वो लौटाते हैं तो अपने सभी हाथों से पैसा वापस करते हैं, तो 1 रुपया यहां से देते हैं, वहां से वो 1,000 देते हैं। फिर भी विश्वास नहीं तो इतिहास के पन्ने खोल दीजिए, द्रौपदी ने क्या दिया था कृष्ण को? एक छोटी सी साड़ी का टुकड़ा। जब वापस लौटाना हुआ, कृष्ण ने क्या पूरी साड़ी की फैक्ट्री खोल दी। वह दुशासन, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, वह साड़ी खींचते खींचते थक गया, मुंह से फैन निकल गए, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। ये है प्रभु। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, परंतु बदले में भगवान ने जब दिया, पूरी द्वारका नगरी ही दे दी। और ऐसा नहीं कि भगवान देने के बाद सोचते हैं यार इसे बहुत ज्यादा दे दिया, जैसे हम लोग सोचते हैं दान देने के बाद। हम लोग दान एक बार उत्साह में आकर, रजस में, रजोगुण में आकर दे देते हैं, फिर पछताते हैं यार यहां थोड़ा ज्यादा हो गया। भगवान ने सुदामा को 1-2 मुट्ठी चावल के बदले पूरी द्वारका दे दी। फिर द्वारका देने के बाद कृष्ण रो रहे थे। उद्धव जी को लगा कि शायद ज्यादा दे दिया इसलिए रो रहे हैं। भागवत में ये प्रसंग है, प्रभु आप रो मत, यदि चाहिए तो मैं वापस लेके आऊंगा, सुदामा वापस कर देगा, आप इतने क्यों रो रहे हो। तब भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण ने उद्धव को इतना ही कहा कि उद्धव उद्धव मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि इस ब्राह्मण ने जो मुझे दिया ना, उसके बदले में मैं इस ब्राह्मण को कुछ नहीं दे पाया, कुछ नहीं दिया। बोले प्रभु आपने सोने की द्वारका तो दे दी। बोले उद्धव तुम नहीं जानते हो, इस ब्राह्मण ने मुझे पड़ोसी के घर से उधार चावल लाकर मुझे दिए हैं, और मैंने उसको द्वारका उधारी में मांग कर नहीं, मैंने तो जो जो था उनमें से थोड़ा सा दिया, जब मैं मेरा सब कुछ इसे लौटा दूंगा तब बिजनेस बराबरी का होगा, मैंने इसे कुछ नहीं दिया। ये है भगवान की स्थिति, भगवान का मनोभाव। तो सभी ओर से, नेगेटिव पॉइंट से, पॉजिटिव पॉइंट से, सभी पॉइंट से सार ये है, संसार में सब कुछ भगवान का है और हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। और यदि हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, यदि प्रसाद की भोजन की बात की जाए, ये जो भोजन है यदि हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो गीता में सीधा भगवान कहते हैं आप पाप खा रहे हो, सीधा। आप यदि गाय को काट कर खाते हो और आप रोटी खाते हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्या अंतर रहा? कुछ लोग तर्क भी करते हैं, क्यों? हम लोग कहते हैं हम शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है, तो क्या वनस्पति में जीव नहीं है? गाय को काटना ही जीव हिंसा है, वनस्पति को काटना जीव हिंसा नहीं है? क्या फल में जीव नहीं है, वृक्ष में जीव नहीं है, वृक्ष को काटना जीव हिंसा नहीं? अरे जीव हिंसा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड हमारा थोड़ा ऊपर हो गया है। गीता में भगवान सीधा कहते हैं कि आप अनाज खाते हो उनमें भी पाप का दोष है, परंतु उस अनाज के पाप के दोष से आपको मुक्त होना है, क्योंकि ये अनाज मेरा है इसलिए आप मुझे अर्पण कर दो। मुझे अर्पण कर दोगे तो आप उनका जो पाप है उससे मुक्त हो जाओगे, सीधा भगवान गीता में सिद्धांत समझाते हैं, क्योंकि ये मेरा है इसलिए मुझे दे दो। और मुझे अर्पण किए बिना आप यदि वेजिटेरियन भी हो फिर भी आप पाप खा रहे हो, भोजन नहीं आप पाप खा रहे हो, इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर ही। यहां पर वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको निवेदन करके ही जो लोग भोजन करते हैं, भगवान को जब हम भोजन चढ़ाते हैं, देखिए कृष्ण की भक्ति राम की भक्ति में हमें कुछ अलग से नहीं करना है, मैंने कल ही कहा हम जो करते आए हैं जो कर रहे हैं वही चीज करना है, परंतु भगवान को अर्पण करना है। परंतु एक बात ध्यान रहे, भगवान कांदा लहसुन चा कॉफी इत्यादि नहीं खाते हैं, है ना? गीता में यह भी कह दिया, बिल्कुल क्लियर कट कह दिया भगवान ने, नहीं तो कुछ लोग, मैं एक बार जीवदानी में, विरार जीवदानी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, आज से 3-4 साल पहले, तो एक कुछ 22 लोग नाचते हुए हाथ में बैठ हैं, किसी के हाथ में बॉल है, नाचते हुए आए और जीवदानी माता का मंदिर तो ऊपर है, लेकिन ये लोग ऊपर नहीं गए, लोग वहां सीढ़ी पर ही खड़े रहे। जीवदानी माता का पहले तो आवाहन किया, फिर थोड़ा मांस लाए, मांस रखा, फिर दारू की बोतल लाए वो डाला, और फिर जीवदानी माता की आरती की, और आरती के बाद ए प्रसाद लो प्रसाद लो, सब लोग प्रसाद प्रसाद बिल्कुल श्रद्धा से मेरे पास आए। आप मैं नहीं लूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खाता हूं, मैंने कहा आज शनिवार है नहीं तो मेरी गीता नहीं लेते, मैंने कहा शनिवार आज उपवास है, नहीं तो बेचारे को बुरा लग जाता और मैं उनको गीता बेचना चाहता था। तो खैर, तो वो लोग सोचते हैं कि ये देवी देवता मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, कभी नहीं। आप विचार तो कीजिए, आज का एक सुसंस्कृत मनुष्य ये कार्य नहीं करता है, इतने शुद्ध देवी देवता मांस खाएंगे, इतने शुद्ध देवी देवता शराब पिएंगे, कभी नहीं। और भगवान तो कभी नहीं, इसलिए गीता में भगवान ने कह दिया पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति अर्जुन सत्वगुणी आहार। यदि भगवान मांस इत्यादि खाते तो भगवान श्लोक में कह देते मांस अंडा मछली तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, भगवान को कहने में क्या देर थी। लेकिन भगवान ने बिल्कुल सतर्क रहकर बताया चाय कॉफी कांदा लहसुन नॉनवेज इत्यादि कुछ नहीं, शुद्ध सात्विक आहार। भगवान को यदि हम भोग लगाते हैं और भोग लगाकर हम उसे ग्रहण करते हैं फिर वो प्रसाद हो जाता है, फिर उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद नरोत्तम दास ठाकुर अनेकों भजन में प्रसाद सेवित है सकल प्रपंच जय, यदि आप थोड़ा भी प्रसाद को ग्रहण कर लेते हो संसार के प्रपंच से मुक्त हो जाते हो, सभी दुर्गुण सभी दोषों से मुक्त, प्रसाद सेवित। और यह प्रसाद जो है त्रिपुरारी नाचे जहां पाए, आप मायापुर में जाओगे तो आज भी यह श्लोक लिखा है त्रिपुर का वध करने वाले साक्षात भोलेनाथ महादेव शिवजी भी उस भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण करके नाचते हैं, वाह आज तो कृष्ण का महाप्रसाद मिल गया है। ये है प्रसाद की महिमा। ये प्रसाद थोड़ा भी स्वल्प मात्रा में ग्रहण कर लिया जाए संसार के सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे। तुरंत आप लोग प्रश्न पूछेंगे हमने तो कितना टन प्रसाद खा लिया, दोषों से तो मुक्त नहीं हुए। कुछ लोग इस सभा में भक्त लोग बैठे हैं और भक्त लोग इस भजन को और इस पद को पढ़कर अक्सर प्रश्न उठाते हैं कि यहां आचार्य गण ने लिखा कि थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने से सभी प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे, तो हम तो कितना प्रसाद खा लिए है ना, वजन करेंगे तो कितना टन हो जाएगा क्योंकि इसमें तो हम माहिर है, है? तो इतना प्रसाद खाने के बाद भी हम लोग सर्व प्रपंच जय प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाए क्यों, क्या शास्त्र गलत है या प्रसाद गलत है। बोले शास्त्र भी गलत नहीं है प्रसाद भी गलत नहीं है, गलत है आपकी मनोभावना, आपने उसे प्रसाद समझकर खाया। ये मालपुआ है बर्फी है तो देना, ये पनीर वाली दो वो गोभी वाली गोभीज वाली मत देना, ये प्रसाद बुद्धि नहीं है। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए, यदि गहराई में यदि हम इसका वर्णन करें तो प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से। जैसे भक्तों में तीन कैटेगरी है कनिष्ठ मध्यम उत्तम, वैसे प्रसाद में भी कनिष्ठ मध्यम उत्तम। आज कुछ लोग घर पे कहते हैं बेटा आज तुझे क्या खाना है, पाव भाजी ठीक है, बनाती है लड़के के लिए और भगवान को दिखा देते हैं पाव भाजी खाओ प्रसाद खाओ, कहें प्रसाद बेटा पिज्जा खाना है ठीक है। क्या आपने कभी सुना भगवान कृष्ण वृंदावन में गैया चराते चराते भोजन थाली के ऊपर बैठकर पिज्जा का बॉक्स खोला है? या सैंडविच खाया या पानी पूरी खा रहे थे, हमने तो कभी नहीं सुना। बनाते हैं हमारे लिए और बिल बनाते हैं भगवान के नाम का है? भगवान तुम ही निवेदित भोजन करे ही। देखिए बहुत सुंदर, यदि एक एक प्रसंग के ऊपर एक एक दिन लिया जाए फिर भी कम है, देखिए 8:30 तो हो गए। तुम ही भगवान को निवेदित, भगवान के लिए कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, चैतन्य महाप्रभु को क्या अच्छा लगता है, हमारे लड्डू गोपाल को क्या अच्छा लगता है, ये तो हमें क्या अच्छा लगता है वो बनाते हैं और भगवान को दिखाते हैं। हालांकि ये भी ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन मैं शुद्ध भक्ति की बात यदि करूं कृष्ण के लिए बनाना, कृष्ण का जो जो भी मिल जाता है उसे खा लेना, इसे कहते हैं प्रसाद बुद्धि। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हाँ प्रसाद में पावर है प्रसाद में शक्ति है, लेकिन उसे जितनी श्रद्धा से लेंगे वो उतना असर करेगा। माता जी मुझे कंप्लेंट कर रही थी, नाम कृपा माता जी, लोग बहुत झूठा छोड़ते हैं। मैं बोला कल नहीं छोड़ेंगे माता जी, क्योंकि कथा में ही ये बात आ रही है प्रसाद यहां पर शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है, भगवान के प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म ही भगवान ही प्रसाद में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम उसे झूठा छोड़ देते हैं। एक और कहते हैं हे कृष्ण कृपा करो, और कृष्ण ने कृपा प्रसाद दिया तो उसे फेंक देते हैं। ये क्या भक्ति है? प्रसाद शुद्ध प्रसाद होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था श्रद्धा होनी चाहिए, प्रसाद में जितनी श्रद्धा होगी वो उतना असर करेगा। आज से कुछ समय पहले हमारे इतिहास में रामानुजाचार्य बहुत बड़े महान भक्त हुए और उनका प्रचार जब विश्व में होने लगा तो संसार में ईर्ष्या द्वेष निंदा करने वाले होते हैं। बोले यदि ये प्रचार करने लगे तो जो अपसंप्रदाय है ये हमारा प्रचार बंद हो जाएगा, उसे मारने के लिए। और रामानुजाचार्य रोज सुबह भगवान का चरणामृत ग्रहण करते थे प्रसाद। तो किसी ने कहा इसे मार डालो। बोले कैसे मारेंगे? काम करते हैं, चरणामृत रोज पीते ही हैं, उसमें जहर डाल देते हैं, पीकर मर जाएंगे। चरणामृत में जहर डाल दिया और कैसे भी करके उनके शिष्य को पता चल गया इसमें जहर है। जैसे ही रामानुजाचार्य आए चरणामृत ग्रहण करने के लिए, शिष्यों ने कहा कि आप इसे ग्रहण मत कीजिए, इसमें जहर है। रामानुजाचार्य ने कहा फिर भी मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि चरणामृत के ऊपर इतनी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि चरणामृत का प्रभाव ज्यादा है कि जहर का प्रभाव ज्यादा है? ये चरणामृत के प्रभाव के सामने जहर कुछ नहीं है, इतनी श्रद्धा इतना विश्वास। और कहा दीजिए, और हाथ में ग्रहण किया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णु पाद उदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते। इस प्रकार श्लोक का उच्चारण करके उन्होंने वह जहर युक्त चरणामृत का पान किया, परंतु पूर्ण श्रद्धा उस चरणामृत के ऊपर होने के कारण जहर रामानुजाचार्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं। ये है श्रद्धा, ये है विश्वास। फिर इतिहास में ऐसी भी घटना घटी, उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य में कि एक शिष्य आए और रामानुजाचार्य का अनुकरण करने लगे। देखिए गुरुजनों का अनुकरण नहीं अनुसरण होना चाहिए। और उसने जानबूझकर जहर मिलाया, बोले अब मुझे दो, पिया मर गए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार प्रसाद तो ग्रहण करना ये भक्ति है, परंतु प्रसाद बुद्धि से। तो जो लोग भगवान को भोग अर्पण करके ही उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और जीवन में प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे ही और भगवान के लिए बहुत सुंदर वस्त्र अलंकार श्रृंगार अर्पण करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उनके घर पर भगवान रहते हैं, उनके घर पर भगवान जाते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने पांच स्थान बता दिए। आइए अब छठा स्थान। अब भगवान को रहने के छठे स्थान में पहुंचे हैं।
सीरन वही सुर गुरु द्विज देखी, सीसन वही सुर गुरु द्विज देखी, सनवाही गुरु सुर द्विज देखी, सनवाही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, प्रीति सहित
छठा स्थान बताते हुए कहते हैं शीश नवही। अब मस्तक का आया है। शीश नवही सुर गुरु द्विज देखी, जो लोग सूर का अर्थ होता है देवता, जितने भी देवी देवता हैं उनको देखकर अपना सिर नवाते हैं। गुरु, गुरु का अर्थ है वरिष्ठ, हमसे बड़े, उसे गुरुजन। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, लघु माने छोटा। बड़ों को देखकर जो अपना शीश नवाते हैं, देवताओं के मंदिरों में जाकर अपना शीश नवाते हैं, और द्विज ब्राह्मणों के चरणों में जो अपना शीश नवाते हैं, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। और इन सब से जो अपना प्रेम रखते हैं, आदर भाव सत्कार करते हैं, उनके घर पर प्रभु आप रहिए। भगवान ऐसे लोग के पास जाते हैं जो लोग झुकना जानते हैं, शीश नवाना जानते हैं। संसार में भगवान प्राप्त हो जाते हैं मात्र झुकने से, मात्र शीश नवाने से, परंतु इतना भी नहीं कर सकते हैं, आलस आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को शीश क्यों नवाए, ये ब्राह्मण तो थर्ड क्लास के हैं, गिरे हुए हैं। प्रायः जो लोग भक्त बन गए हैं वैसा कहते हैं, हम लोग ब्राह्मण से बड़े हैं। नहीं, जो भी हो, ब्राह्मण कैसे भी हैं, परंतु हमें ब्राह्मणों का दोष नहीं, हमें तो गुण ही देखना है। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे भगवान ने ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया। भागवत में भगवान ने कहा है, ब्राह्मण मेरे मुख है, और भगवान के मुख का अनादर करना, कभी भी जीवन में ब्राह्मण कैसे भी क्यों ना हो, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देखकर उनका आदर होना चाहिए। कल लखनलाल और परशुराम आमने सामने हो चुके थे, लखनलाल ने परशुराम को इतना ही कहा कि हमारे कुल में ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता है, और परशुराम जी आपके शरीर पर मैं जनोई देख रहा हूं, मेरे और आपके वध के, आपकी लाश के बीच में मुझे जनोई नड़ रही है, यदि इतनी ही आप में शक्ति है तो जनोई को निकालो और आओ सामने। आदर करते थे, पहले के क्षत्रिय भी ब्राह्मणों का सत्कार और सम्मान करते थे, परंतु आज तो ब्राह्मणों को बिल्कुल निग्लेक्ट किया जाता है। खास करके जो लोग भक्त बन गए वो लोग ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं ये ब्राह्मण तो गिरे हुए हैं, पतित हैं। भक्तों, ये बात सत्य है, ब्राह्मण का स्टैंडर्ड गिर चुका है, बात सत्य है, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य है शम दम तप शोच शांति ऊर्जव एवच ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मणों के ये सब कार्य हैं। खैर, आज के ब्राह्मण ये कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ब्राह्मणों को आदर देना चाहिए, ये वाल्मीकि ऋषि भगवान को कह रहे हैं। क्यों? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्राह्मण लोग गिर चुके हैं, पतित हो गए हैं, तो क्या हम लोग नहीं गिरे हैं? चार वर्ण भगवान ने बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भक्तों, ब्राह्मण जितने गिरे हैं उतने क्षत्रिय भी गिरे हैं, उतने वैश्य भी गिरे हैं, उतने शूद्र भी गिरे हैं, इसलिए चारों लेवल में हो गए हैं, ऐसा मत समझिए ब्राह्मण ही गिरे हैं। क्या क्षत्रिय गिरे नहीं है? आज कुछ लोगों का क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है लेकिन बिल्ली जैसे है। क्षत्रिय का काम क्या है? भगवान ने कहा क्षत्रियो का काम है देश की रक्षा करना, लेकिन छुप कर बैठ जाते हैं। सभी क्षत्रियो को बॉर्डर पर होना चाहिए। कौन है क्षत्रिय का स्टैंडर्ड गिर गया है। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, और आज सभी वैश्य शूद्र बन गए, नौकरी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एटलीस्ट बी अ बिजनेसमैन, कम से कम बिजनेस करो। वैश्य जो है वो भी गिरे, अपना स्टैंडर्ड से नीचे आ गए। तो क्षत्रिय गिरे, वैश्य गिरे, शूद्र भी गिर गए। शूद्र का काम है सबकी सेवा करना, कहां कर रहे हैं? झगड़ा के अलावा कुछ कर रहे हैं? वो भी गिरे हैं, सब लोग गिरे हैं, इसलिए गिरने में सब लोग समान हैं। कुल मिलाकर शीश नव ही सुर गुरु द्विज देखी। देवताओं को देखकर, गुरुओं को देखकर और ब्राह्मणों को देखकर शीश नवाना चाहिए। हमारे सनातन गोस्वामी एक दिन में 1000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, एक दिन में। गिनकर, ऐसा भी नहीं, हम लोग जैसे गिनकर माला जपते हैं वैसे गिनकर 1000 वचनों को दंडवत, थोड़ी भी आलस नहीं। और हमें तो भगवान के सामने प्रणाम करना होता है तो उसमें कितनी आलस भरी है। शीश नवाना चाहिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान के सामने शीश नवाने से भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। भागवत में, राम महाभारत में तो यहां तक कहा गया, 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। यदि कोई भगवान को एक बार प्रणाम करे और 10 अश्वमेघ यज्ञ करे, दोनों बराबर हैं, आप क्या करना चाहोगे? 10 अश्वमेघ यज्ञ कलयुग में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उसके उत्तरार्ध में वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं, 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, लेकिन फिर भी 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला फिर से इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसता है, लेकिन एक बार भी यदि भगवान के सामने अपना मस्तक झुका दे, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, फिर से इस संसार में वह आता है। और आगे इतना जोड़ दीजिए, कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से यदि कोई व्यक्ति संसार में आ जाए, परंतु कृष्ण के भक्तों को एक बार प्रणाम कर दीजिए, वो तो कभी सपने में भी भगवान का धाम छोड़कर इस प्रपंच में आ नहीं सकता है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। फिर हमें हमारी बुद्धि से तोलना नहीं चाहिए, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, अरे ये ठगते हैं, ये करते हैं, कभी नहीं। सर्वत्र सम दर्शन, समान देखना चाहिए। कल का इतिहास, हमारे इतिहास में एक महान महापुरुष हो गए जिसका नाम था गौर मोहन, बंगाल में रहते थे, कलकत्ता में। और जितने भी लोग, जितने भी ब्राह्मण उस गौर मोहन जी के पास आते थे तो उनको घर पर बुलाते थे, आइए प्रसाद दिलवाते थे प्रसाद। और फिर प्रसाद देने के बाद, पैसे देने के बाद, वो इतना ही कहते थे, मेरा एक बच्चा है जिसका नाम अभय है, आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, राधा रानी का भक्त बने। प्रभुपाद जी लिखते थे अपनी किताबों में, लिखे हैं, गौर मोहन देव को ये पता था कि ये ठगने वाले ब्राह्मण है, दूसरों को ठगते हैं, लेकिन मेरे पिता ने कभी ऐसा नहीं देखा। ब्राह्मण के वस्त्र का आदर करके घर पर लाते थे और ब्राह्मणों को भोजन खिलाते थे। अपनी कलम चलाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, उस ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज मैंने पूरी दुनिया को भक्त बना दिया है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, देवताओं को प्रणाम और गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। यह करने से भगवान प्राप्त होते हैं। और मान लो पूछा जाए, रामायणकार को पूछा जाए कि यदि भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो रामायणकार कहते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो लोग भगवान को, देवता को, ब्राह्मण के सामने अपना मस्तक झुकाते नहीं है, सो सिर कटी संबर तुला, पहले तो उसका जो मस्तक है वो मस्तक नहीं, वह कलिंगर है। सो सिर कटी संबर तुला, जोन नमत गुरु हरिपद मूला, गुरु के चरणों में जो अपना मस्तक झुकाता नहीं है, उस मस्तक तो कट जाना चाहिए, काट देना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को कहते हैं, भारम परम पट्टी किरीट जुष्टम, भार है वो। इसलिए भगवान के सामने मस्तक झुकाना चाहिए। संसार में बहुत बड़ा आश्चर्य है, आज का मनुष्य अपनी पत्नी के सामने मस्तक झुका देता है, हजाम के सामने तुरंत जाकर बैठ जाता है, परंतु गुरु और ब्राह्मणों के सामने नहीं झुकाता है। झुकाना चाहिए, झुक, यदि आप झुकना सीख गए, भगवान दूर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा बात नहीं बताई, लेकिन सर्व शास्त्र का सिद्धांत शिक्षाष्टकम में दे दिया, त्रिनादपि सुनी चेन तरोर इव सही सुना। झुकना सीख गए और दूसरों को सम्मान देना सीख गए, कीर्तनीय सदा हरि, सदा आप कीर्तन कर सकते हो। झुकना, और जो लोग झुकते हैं ना वही भगवान के शुद्ध भक्त है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो बारंबार प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम शुद्ध भक्ति होती है वो अपने आप को बहुत हीन समझता है। प्रेम के फल भगवान जिसके हृदय में आ चुके हैं वो सदैव झुका हुआ रहेगा। जैसे वृक्ष को आपने देखा है, वृक्ष में जिस वृक्ष की डाली के ऊपर फल लग जाता है वो डाली झुक जाती है। क्यों? क्योंकि फल है। और जिसमें फल नहीं होते वह सीधे खड़े रहते हैं, अशोक वृक्ष के जैसे सीधे झुकते नहीं है। वास्तव में भक्ति है तो झुकना होगा, नम्रता होगी। तो छठा स्थान बताते हुए कहते हैं, गुरु ब्राह्मण और देवताओं के सामने जो अपना मस्तक नवाते हैं उनके घर पर प्रभु आप रहिए। और फिर सातवां स्थान बताते हुए कहते हैं, कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अपने हाथों से जो भगवान की सेवा करते हैं, माला बनाना, वस्त्र बनाना, पुष्प उतारना, मंदिर में झाड़ू लगाना, कपड़ा लगाना, कर नित कर ही अपने हाथों से निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, यह है किंकरी भाव, एक एक दासों का भी दास बनकर रहना। मंदिर में झाड़ू लगाना यह सबसे बड़ी सेवा है भक्त। कुछ लोग सोचते हैं कि बस व्यासपीठ के ऊपर बैठकर प्रवचन करना, कथा करना यह सबसे बड़ी सेवा। नहीं, भौतिक जगत में जो हमें बड़ा दिखता है भगवान के धाम में वो सबसे छोटा है। भगवत गीता 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग ऊर्ध्व मूल अधशाखा, है ना, आप सबको पता है। ये भौतिक जगत भगवान के धाम का विकृत प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। यहां इस जगत में जो सबसे छोटी सेवा होगी भगवान के धाम में वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। इसलिए कर नित कर अपने हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, कपड़ा लगाना, पुष्प उतारना, वस्त्र प्रक्षालन करना, कपड़े धोना, रसोई में जाकर बर्तन मांजना ये सबसे बड़ी सेवा है। भागवत के नवम स्कंद में 4वें अध्याय में इस पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश की कथा है। राजा थे और 1000 पत्नी थी, परंतु झाड़ू वह स्वयं अपने हाथों से मारते थे, अपने हाथों से कपड़ा, मंदिर का मार्जन सब कुछ अपने हाथों से करते थे, जानते थे। रामायण में आगे एक बहुत सुंदर प्रसंग आएगा, मुझे नहीं लगता है वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच गए फिर याद आएगा कि नहीं आया, आया इसलिए कह देता हूं कि छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान देख रहे हैं। आप ऐसा मत समझो भगवान, और छोटी सेवा भगवान के नेटवर्क में तुरंत पहुंच जाती है। छोटी सेवा, आप भगवान को जब सीता को प्राप्त करने के लिए लंका में जाना था तो सेतु बनाने लगे, और सेतु बनाने के लिए भगवान ने हनुमान जी को ऑर्डर दे दिया, और हनुमान जी ने नल नील को बिठा दिया, और जितने भी वानर थे सब लोग बड़े बड़े पर्वत, पत्थर, वृक्ष सब कुछ ला लाकर नल नील को देने लगे और उसमें डालने लगे। सब लोग उद्यम में लगे थे, सब लोग अपने काम में परिश्रम में लगे थे। उस समय एक छोटी सी गिलहरी, गिलहरी जानते हैं, छोटी सी गिलहरी वहां पर एक छोटे छोटे दाने ले लेकर उस समुद्र में फेंक दी थी। अब कहां ये हनुमान के हाथ का बड़ा बड़ा चौड़ा पर्वत है हजारों योजन का, और वहां कहां गिलहरी का एक छोटा सा दाना है। और वो गिलहरी भी पूरे परिश्रम में लगी थी, ला लाकर डाल रही थी, ला लाकर डाल रही। तो वो गिलहरी बीच बीच में लाकर डाल रही थी, तो ये हनुमान और उसके पांव में आ रही थी। अरे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, ये क्या बीच में नड़ रही है, साइड में होता है ना कभी कभी, जो बहुत नम्र हम्बल भक्त होते हैं, सतोगुणी होते हैं, वो करते रहते हैं अपना काम, तो जो मेरे जैसे रजोगुणी होते हैं तो उनकी आंखों में खटकते, साइड में रहो। तो ये लोग, वो गिलहरी अपनी अपनी अपने वेग से छोटा छोटा पत्थर, छोटा छोटा दाना ले लेकर उस समुद्र में, समुद्र सेतु बनाने में डाल रही थी। और रास्ते में वो छोटी थी इसलिए सबके पाँव में आती थी, तो सब लोग रुक जाते थे, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, क्यों परेशान कर रही है। एक ने तो कहा, तेरी बदली का मैं पूरा पहाड़ डाल देता हूं, ये तेरे नाम का, लेकिन तू साइड में बैठ। हम लोग होते तो कह देते, कोई बात नहीं, मेरी बदली दान दे रहे हो तो कर दो, मेरी बदली सेवा कर दो। लेकिन गिलहरी ने कहा, नहीं, मैं मेरी सेवा आपको नहीं दूंगी, छोटी सी गिलहरी, मैं मेरी सेवा खुद स्वयं करूंगी, मैं अपने हाथों से, अपने मुख से भगवान राम के लिए सेतु बनाऊंगी। ये सब लोग परेशान हो गए और ये कंप्लेंट भगवान राम के पास गई। प्रभु, पुल तो बन जाएगा, लेकिन जब तक ये गिलहरी को साइड में नहीं करोगे तब तक पुल नहीं बनेगा आपका। कुछ लोग फिसल रहे थे, गिर रहे थे, ब्रेक मार रहे थे, स्लिप हो रहे थे। प्रभु ने कहा, बुलाओ उसे, मेरे पास बुलाओ। अब देखिए, ये इशू बहुत छोटा था, ये गिलहरी एक साधारण गिलहरी थी, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा हो गया। अब गिलहरी को भगवान के पास पेश किया गया, एक पत्थर के ऊपर गिलहरी बैठी थी। भगवान गए, बोले क्यों परेशान कर रहे हो सबको। बोले प्रभु, मैं परेशान कहाँ कर रहे हो, मैं तो पुल बना रही हूं। बोले तुम क्या पुल बनाओगी, पुल पता जानती हो कितना बड़ा पुल बनाना है। प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन प्रभु आपको एक बात बताऊं, ये लोग बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर ला रहे हैं और समुद्र में डाल तो रहे हैं, परंतु उस पत्थरों के बीच में कुछ जगह बच जा रही है सीमेंट डालने की है, और ये काम ये बंदर लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वो जगह बंद कर रही हूँ ताकि सब जुड़ कर रहे हैं। छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है, छोटा कार्य भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तब भगवान के हृदय में हो गया, वाह गिलहरी, भगवान ने अपना हाथ गिलहरी के ऊपर थप थपाया, वाह गिलहरी वाह। गिलहरी का प्रभु शांत, मर जाऊंगी। भगवान ने वाह गिलहरी वाह, तो भगवान ने अपना हाथ गिलहरी पर, भक्तों ये प्रसंग आज भी साक्षी दे रहा है, भगवान ने जब अपना हाथ गिलहरी के ऊपर रखा, भगवान राम की तीन उंगली उस गिलहरी के पीठ पर रह गई। आज भी गिलहरी के पीठ पर भगवान राम की तीन उंगली आप देख सकते हो। छोटी से छोटी सेवा भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा मत समझिए मंदिर में छोटी सेवा करने वाले बहुत छोटे भक्त हैं, नहीं, दिखावा करने वाले छोटे होते हैं। भक्ति का सिद्धांत थोड़ा उल्टा है, जो लोग सबसे पीछे रहते हैं, अपने आप को सबसे हीन समझते हैं, वो महान है, वो ग्रेट है। तो कर नित करे ही राम पद पूजा, मैं ऐसे ही कथा करूंगा तो आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज नारी धर्म, कल एक प्रभु जी ने कंप्लेंट किया, प्रभु जी आपने कहा था कि आप नारियों के बारे में बताओगे, मैं कितना मेहनत और प्रयास करके पत्नी को लेकर आया और आपने कहा नहीं, इतना अच्छा गृहस्थी चल रही थी, आपने आप झगड़ा कराओगे आज हमारा। तब मैंने सोचा कि आज का नर अपनी पत्नी से कितना डरता है, और आज तो इस उपदेश की जरूरत है ही।